हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ी आवाज़ आई, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्ण, सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। यहाँ पे हिंदी की भागवतम क्लास होने वाली है। जयपताका स्वामी महाराज की भागवतम क्लास सुनने के लिए जो भक्त लोग आए हैं वो मंदिर जा सकते हैं। इंग्लिश में महाराज वहाँ क्लास देंगे, हिंदी में ये सेवा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम अक्रूरदास है। मुझे बहुत खुशी आप सब लोगों को हिंदी क्लास में देख के। 1974-75 में श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में इंग्लिश में ही भागवतम क्लास देने का सिस्टम शुरू किया था और 10 साल तक 1985 तक इंग्लिश में ही भागवतम क्लास वृंदावन में होती रही। 1985 में मैंने यहाँ पे हिंदी की भागवतम क्लास शुरू कराई थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी की क्लास में भी इतने सारे लोग आ रहे हैं। जब मैंने हिंदी की क्लास यहाँ शुरू की थी तो तीन भक्त थे यहाँ पे जो हिंदी चाहते थे और उसमें से कोई एक दो कभी कभी तीन क्लास में आते थे। कोई और था नहीं कि हिंदी की क्लास कौन देगा, तो किसी के नहीं होने की वजह से हिंदी की क्लास मुझे ही देनी पड़ती थी। मेरी उम्र उस समय 17-18 वर्ष की थी। दिमागी रूप से तो मैं अभी भी उससे ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन अब उस बात को 1985 से आज तक बहुत साल हो चुके। तो आप सभी भक्तों का इस हिंदी की भागवतम क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय, कोई मृदंग बजा सकता है? जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ কি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি ইসকন বৃন্দাবন কি নিতাই গৌর প্রেম আনন্দে অল গ্লোরিজ টু দ্য সম্বল ডিভোটিজ অল গ্লোরিজ টু দ্য সম্বল ডিভোটিজ অল গ্লোরিজ টু দ্য সম্বল ডিভোটিজ অল গ্লোরিজ টু শ্রী গুরু অ্যান্ড শ্রী গৌরাঙ্গ आज हम सातवें स्कंद के 15वें अध्याय के 57वां श्लोक कर रहे हैं श्लोक 57 अध्याय 15 स्कंद 7 सेवंथ कैंटो 15th चैप्टर 57th श्लोक इस पे आएगा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है ओके मुझे लगता है यहां कुछ प्रोसेस चल रहा है पहले ये क्लास बलराम हॉल में हुआ करती थी कब से यहां शिफ्ट हो गई कार्तिक में यहां शिफ्ट हो गई यहां पे तो खूब अच्छी तरह से शोर है मुझे पता नहीं आपको क्लास सही तरह से सुनाई आएगी कि नहीं और हमारे पास वर्ड्स लिखा हुआ भी नहीं है लेकिन आप अपने स्मार्टफोन में खोल सकते हैं एक बार फिर से सातवां स्कंद 15वां अध्याय 57वां श्लोक 57 आदा वंते जननाम सत् आदावन्ते जननाम सत् बहिरन्तः परावरम् ज्ञानं ज्ञेयं वचो वच्चम् तमो ज्योतिस्वयं स्वयं आदावन्ते जननामसत् बहिरन्तः परावरा ज्ञानं ज्ञेयं वचो वच्च तमो ज्योतिस्वयं स्वाया। गो अहेड, किसी को बोलना है? बैरंत परावरम ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं लेडीज आदावन्ते जननामसत् बहिरंत परावरम ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। आदो प्रारंभ में, अन्ते अंत में, जनानां सभी जीवों का, सत सदैव विद्यमान, बहिः बाहर, अंतः अंदर से, पर अलौकिक, अवराम पदार्थ, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम लक्ष्य, वच वाणी, वाच्यम परम लक्ष्य, तमः अंधेरा, ज्योति प्रकाश, तो निसंदेह, आयम यह परमेश्वर, स्वयं स्वयं। अनुवाद, जो अंदर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में, भोग्य तथा सभी वस्तुओं के भोक्ता के रूप में, उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान है, वे परम सत्य हैं। वे सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर सर्वस्व हैं। प्लीज रिपीट, जो अंदर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में, भोग्य तथा सभी वस्तुओं के भोक्ता के रूप में, उच्च तथा नीच रूप में विद्यमान है, वे परम सत्य हैं। वे सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर सर्वस्व हैं। तात्पर्य है, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। यहां पर वेदों की इस सूक्ति की व्याख्या की गई है, सर्व खल विदम ब्रह्म, चतुश्लोकी भागवत में भी इसकी व्याख्या की गई है, अहम एवासम एवग्रे एवाग्रे, परमेश्वर प्रारंभ में विद्यमान थे, वे सृष्टि के पश्चात भी रहते हैं और प्रत्येक का पालन करते हैं, और प्रलय के पश्चात सब कुछ उन्हीं में लीन हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृतिम यन्ति मामिकाम, इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व है। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्णावस्था में हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण है। यही ज्ञान की पूर्णता है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक नारद मुनि जी का बोला हुआ है। इस चैप्टर का नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। ये पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से प्रवचन है, क्लास है, नारद मुनि जी के द्वारा दी गई क्लास। ये जो सातवां स्कंद है, इसको काफी कुछ नारद मुनि जी ने स्वयं ही बोला है। आपको पता होगा कि भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। कोई बोला 18,000? हाथ ऊपर किया था आपने? हाथ ऊपर किया था? 18,000। लेकिन अगर आप गिनने जाओगे इस 15वें अध्याय में 70 श्लोक, अगले अध्याय में 20 श्लोक, किसी में 25 श्लोक, किसी में 50 श्लोक, ये सारे अगर काउंट करने जाओगे तो 18,000 बनते हैं? नहीं बनते। 14,095 हमने काउंट किए हुए हैं, हमने ये सारे श्लोक काउंट किए हुए हैं। इसमें 18,000 श्लोक नहीं है, 14,095 श्लोक है। लेकिन फिर 18,000 श्लोक हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए 18,000 श्लोक कहते हैं क्योंकि संस्कृत ग्रामर में एक श्लोक का अर्थ होता है 32 सिलेबल्स, 32 शब्द। तो अगर जो सारे श्लोकों के सारे शब्द ले लो और उनको 32 से डिवाइड कर दो तो फिर से 18,000 आएगा। जो आपका उत्तर है वो राइट है। 18,000 श्लोकों में से भागवतम में, भागवतम की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास। आपने हाथ ऊपर किया था? प्रभु जी ने बताया बिना हाथ ऊपर किए कि महर्षि वेदव्यास ने रचना की थी, और अगली बार से हाथ ऊपर करते सीधा ही बता रहे हैं। आपके पास तो सारे आंसर हो सकते हैं लेकिन बाकियों को भी सोचने का थोड़ा मौका दो। भागवतम की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, प्रभु जी ने बताया, लेकिन क्या भागवतम को महर्षि वेदव्यास ने बोला है? भागवतम किसने बोली? गणेश जी, गणेश जी ने बोली। एक मिनट, सुखदेव गोस्वामी, यस, सुखदेव गोस्वामी। और सूत गोस्वामी के बारे में क्या ख्याल है? सूत गोस्वामी ने नहीं बोली? जब भागवतम खोलो तो शुरू से ही आता है सूत उवाच, तो सूत गोस्वामी ने नहीं बोली? भागवतम महर्षि वेद व्यास ने रचना की है लेकिन उन्होंने स्वयं उसको बोला नहीं। ऑफ कोर्स प्रारंभ में रचना उन्हीं की है लेकिन उन्होंने घर में अपनी पत्नी को सुनाई और वहां से सुखदेव गोस्वामी जो उनकी पत्नी के गर्भ में थे वो सीख गए। जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोली तो उन्होंने सारी भागवतम स्वयं नहीं बोली, जो बहुत सारे लोगों को कोट किया, और उस भागवतम को सुनने के लिए सूत गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित थे। सूत गोस्वामी वो भागवतम शुकताल में सुन के नैमिषारण्य चले गए क्योंकि उनका घर भी नैमिषारण्य में ही था। जब नैमिषारण्य गए तो वहां पे उनसे दोबारा से शौनक आदि ऋषियों ने अपने 88,000 शिष्यों के समेत प्रार्थना की कि हमें भी भागवतम का संदेश प्राप्त हो। तो इसलिए अगर जो देखा जाए तो महर्षि वेदव्यास ने कितने श्लोक बोले? 18,000 श्लोक या 14,000 श्लोक में से कितने? अब हाथ ऊपर करो। 6। 18,000 में से 6 श्लोक स्वयं बोले, वहां पे लिखा हुआ आएगा शिल वेद व्यास वाच, खाली 6 श्लोक। और उसके अलावा सबसे अधिक श्लोक भागवतम में बोले गए सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने पूरा लगभग 10वां स्कंद स्वयं बोला है। उनका एक तरह से कहा जाता है, हमारे राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी 10वां स्कंद ही बताना चाहते थे, ये तो उसके दोनों तरफ थोड़ी पैडिंग लगा दी तो बाकी का भागवतम संदेश भी। दूसरे लोगों को ज्यादातर उन्होंने कोट किया है और स्वयं ज्यादा करके 10वां स्कंद बताया है। तो टॉप स्पीकर भागवतम के सुखदेव गोस्वामी है। नंबर 2 पे कोई बता सकता है सेकंड नंबर पे टॉप स्पीकर कौन होगा भागवतम का? अगर आपको नहीं पता तो आप गेस नहीं कर सकते। ये गेस करने के लायक नहीं है। नंबर दो पे 1100 श्लोक बोले हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने 11वें 12वें स्कंद में, बहुत सारे श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले। और नंबर तीन, टॉप स्पीकर ऑफ द भागवतम इज सुत गोस्वामी, और उनके बाद नारद मुनि का नंबर आता है। नारद मुनि इज नंबर 5, टॉप स्पीकर। सातवां स्कंद ज्यादा करके नारद मुनि ने ही बोला है। हर एक स्कंद में कोई ना कोई 2-4-5 श्लोक नारद मुनि ने बोले हैं। मतलब के नारद मुनि जी को कोट किया गया है किसी भी स्पीकर के द्वारा। स्पीकर कौन है? सुखदेव गोस्वामी उनको कोट कर रहे हैं, सूत गोस्वामी। और जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम बता रहे हैं तो वो दूसरे लोगों को कोट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे स्वयं को नहीं आ रही मेरी आवाज, इतना पीछे से शोर है। तो सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय को कोट करते हैं, नारद मुनि को कोट करते हैं। तो नारद मुनि इस हिसाब से एक तरह से टॉप 5 में स्पीकर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भागवतम स्वयं बोली, और जिनकी रचना ये कहलाती है उन्होंने स्वयं कुल मिला के 6 श्लोक 18,000 में से बोले। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये स्पीकर के बारे में, इसके स्पीकर इस श्लोक के नारद मुनि है। और इस श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि परम सत्य क्या है, कैसे परमेश्वर सर्वस्व है। कैसे बता रहे हैं? जो अंदर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ में और अंत में, प्रारंभ में भी और अंत में भी, हर जीव और हर वस्तु। वस्तु क्या है? ये जो कुछ भी भौतिक संसार, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, सब वस्तु ही है। उसके अलावा तो हम यहां आत्माएं हैं। किसी को दिखती हैं? किस किस को आत्माएं दिखती हैं? यहां आत्माएं नहीं दिखती। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो वस्तु ही है। परम सत्य एक होता है, सत्य एक होता है, परम सत्य। जो सत्य है वो समय समय पे चेंज होता रहता है। जैसे कि आप जो कोई भी हो, आपका नाम, इस समय कृष्ण हॉल में बैठे हो, ये सत्य है, सत्य है। लेकिन थोड़ी देर में यहां से उठ के जाके बलराम हॉल में बैठ जाओगे तो वो सत्य बदल जाएगा। जो सत्य होता है वो बदलता रहता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार सत्य बदलता रहता है। लेकिन जो परम सत्य है वो कभी नहीं बदलता। परम सत्य बदलता है? कभी नहीं बदलता। परम सत्य नहीं बदलता। तो यहां पे बताया गया भोग्य और सभी वस्तुओं के भोक्ता के रूप में। भोग्य क्या है? ये मटेरियल नेचर, जो कुछ भी इस संसार में, भौतिक संसार में जो कुछ भी है सब कुछ भोग्य है। और उसका भोग कौन कर रहा है? हम जीव। लेकिन हम जीव हैं कौन? भगवान के अंश, तो अगर भगवान के अंश हम हर चीज का भोग कर रहे हैं तो भोग कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो भगवान के अंश ही हैं। ये श्लोक बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जो ध्यान से सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा। वे सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, ज्ञान भी कृष्ण ही है और ज्ञेय भी कृष्ण ही है। आप सब लोग पीछे बोलिएगा, मैं श्लोक बोलूंगा भगवद गीता का 15:15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्ता सर्व ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये भगवद गीता में बहुत लोडेड श्लोक है। एक्सैक्टली यही कहता है जो यहां पे बताया जा रहा है कि सारे वेदों में जानने योग्य कौन है? मैं हूं, भगवान कहते। सारे वेदों में सारा ज्ञान, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण ये सब कुछ आपने कर लिया, रामायण महाभारत, जानने योग्य क्या है? कृष्ण। इन सब का निचोड़ क्या है? कृष्ण। तो हर तरह से भगवान सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय है। ज्ञान को भी, ज्ञान को हम वैदिक संस्कृति में क्या कहते हैं? वेद। वेद को ज्ञान या ज्ञान को वेद, दोनों एक ही है। जैसे आम भाषा में भी हिंदी भाषी लोग एक दूसरे से कहते हैं, कोई कहे ऐसा करना चाहिए तो दूसरा हो सकता है कहे क्यों कहना चाहिए, क्यों करना चाहिए ऐसा, क्या वेदों में ऐसा लिखा है, क्या ये वेद वाक्य है? कोई कहा हाँ हाँ ये वेद वाक्य, अच्छा ठीक है फिर हम कर। तो वेद वाक्य जानने मानने करने योग्य होता है। तो भगवान कह रहे हैं वो वेद वो ज्ञान भी मैं ही हूं, और उस ज्ञान से वेदों से शास्त्रों से उपनिषद से जानने के योग्य भी मैं ही हूं। अगर जो किसी ने सारे वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए और सारे शास्त्र रामायण महाभारत और सब कुछ, और अभी उसको ये समझ में नहीं आया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान सर्वस्व कृष्ण ही है, तो क्या फायदा हुआ उसके सारे वेद पढ़ने का? कोई फायदा हुआ? बहुत से लोग, अभी मैंने रिसेंटली भी सुना, बहुत से लोग जो बड़े बड़े हजारों लोगों को प्रवचन करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, बहुत बड़ी उम्र नजर आ रही है, बहुत बड़े तिलक लगाए हुए हैं सारे माथे पे और सब कुछ, उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि देवी देवताओं में और भगवान में अंतर क्या है। यहां पे कितने लोगों को देवी देवताओं और भगवान में अंतर समझ में आता है? अभी भी सारे हाथ ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी इतने लोग बहुत है। अगर जो आपको देवी देवताओं और भगवान में अंतर समझ में आ रहा है तो आप उन बहुत बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं से बेटर हो कि आपको देवी देवताओं और भगवान में अंतर समझ में आ रहा है। मेरा तो जन्म एक तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में हुआ है। मैं 14 साल का था जब मेरे पिताजी ने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया 1979 में, तो मुझे तो पता नहीं इतना ज्यादा कि बाहर क्या होता है, लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से किसी का ऐसा वो आया कि गोवर्धन के ऊपर कोई बोल रहा है। तो महाराज जी, बहुत बड़े महाराज जी, गोवर्धन को देवता बता रहे। क्या गोवर्धन देवता है? और गोवर्धन का पर्पस बता रहे हैं, जिसको जो मांगो उसको वो मिलता है, मनोकामना पूरी होती है गोवर्धन से। ये उनकी समझ है गोवर्धन की। अगर ये उनकी समझ है तो जो हजारों लोग उनके सुन रहे हैं उनकी कितनी समझ होगी। मुझे इतना दुख हुआ ये सुन के, तब से मैं जो कोई भी क्लास दे रहा हूं मैं अपने लोगों को कंफर्म कर रहा हूं कि सबको मालूम है ना देवताओं में और भगवान में अंतर क्या है, नहीं तो हमारी नाक मत कटवाना। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता में शुरू से ही देवताओं में और भगवान में अंतर बताना शुरू कर दिया, शुरू से ही। तो जिसने भी दो चैप्टर भी भगवद गीता के तात्पर्य समेत श्रील प्रभुपाद के पढ़ लिए, उसके मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा कि देवी देवताओं और भगवान में क्या अंतर है। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि यहां पर वेदों की सूक्ति की व्याख्या की गई है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, चतुश्लोकी भागवत में भी इसकी व्याख्या की गई है। अहम एवासम एवाग्रे, परमेश्वर प्रारंभ में विद्यमान थे, विसृष्टि के पश्चात भी रहते हैं और प्रत्येक का पालन करते हैं। हर किसी का पालन भी वो ही करते हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में भी थे तो इसका मतलब सृष्टि भी उन्होंने ही की, और अंत में भी रहेंगे तो इसका मतलब जिनको हम संहारकर्ता मानते हैं उनके बाद भी भगवान तो रहेंगे। जो संहारकर्ता कौन? महेश्वर। उनके संहार करने से क्या पृथ्वी एंड हो जाएगी? नहीं, एंड नहीं हो जाएगी, वो फिर भी रहेगी। तो भगवान चतुश्लोकी में ज्ञान देने आते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 साल तक की तपस्या करते हैं। जब तपस्या पूरी हो जाती है तो वापस अपने धाम को चले जाते हैं। जब वापस अपने धाम को चले जाते हैं तो भगवान उनको प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं, आप तपस्या कर रहे थे? कि जी हां। क्या किस लिए तपस्या कर रहे थे? जी आपको जानना चाहता था। तपस्या पूरी हो गई? जी हां हो गई। मुझे जान गए कि नहीं जाना? तो कैसे तपस्या पूरी हो गई? तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ध्यान से सुनना, मैं जान गया कि मैं आपको कभी जान नहीं पाऊंगा, मैं जान गया कि मैं कभी आपको जान नहीं पाऊंगा। यह ब्रह्मा का स्टेटमेंट है। और हम शायद समझ रहे हैं कि भगवान को हम जान गए। अगर जो ब्रह्मा नहीं जान पाए तो कौन जानेगा? लेकिन भगवान की इच्छा से, भगवान के आशीर्वाद से हम में से कोई भी जान पाएगा। तो भगवान ने 4 श्लोक में, चतुश्लोकी भागवतम उसको कहते हैं, ये दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33, 34, 35, 36 श्लोक है। 4 श्लोक जो भागवतम के चतुश्लोकी माने जाते हैं, वो भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33, 34, 35, 36 श्लोक है। और उसमें भी भगवान यही ज्ञान ब्रह्मा को देते हैं कि तू मुझे समझना चाहता है। हाँ, तो यहां से शुरू कर ले कि जब ब्रह्मा जी आप नहीं थे, ये सृष्टि नहीं थी, ये ब्रह्मांड नहीं था, सारा मृत्युलोक नहीं था और महाविष्णु भी नहीं थे जो सर्व कारण कारण में, बलराम भी नहीं थे, उससे पहले भी मैं था। और जब ये सब चीज समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी मैं रहूंगा। भगवान सबके हृदय में ना केवल हैं, सबके हृदय को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, हर किसी का। तो यहां पे बताया गया कि सृष्टि के पश्चात भी वे रहते हैं और प्रत्येक का पालन करते हैं। पालनकर्ता कौन है? विष्णु। सृष्टिकर्ता किसको मानते हैं हम? ब्रह्मा को। किस तरह से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं? असेंबली की सृष्टि। सृष्टिकर्ता शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ही है, लेकिन ब्रह्मा को पहले भगवान विष्णु या महाविष्णु वो सारे तत्व देते हैं जिससे सृष्टि का निर्माण होगा। सृष्टि मतलब ये पूरा ब्रह्मांड बना के दिया हुआ है ब्रह्मा जी को और सारे तत्व दिए हुए हैं। कितने तत्व हैं हमारे बनाने में? 24 तत्व, 5 पंच महाभूत जो आप जानते हो, भूमि पृथ्वी आकाश ये सब, उसके अलावा 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय ये हो गए 20, उसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार ये 3 मिला के हो गए 23, और उसके अलावा काल या मैं मतलब के आत्मा, अभी 24वां तत्व तो आत्माएं। तो ये 24 के 24 आते तो महाविष्णु से हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता हम इसलिए मानते हैं ब्रह्मा जी को क्योंकि इन 24 तत्वों को मिक्स करके सृष्टि ब्रह्मा जी आगे करते हैं। लेकिन यहां पे बताया गया कि प्रलय के पश्चात भी सारी सृष्टि उनमें लीन हो जाती है। प्रकृति यान्ति मामिकाम, इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व है। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्ण अवस्था में हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। अभी तक हम आपको ब्रह्मा के बारे में बता रहे थे, अब ये ब्रह्मा का स्टेटमेंट है। ब्रह्मा का सबसे फेमस स्टेटमेंट क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसका अर्थ है गोविंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप, वे सबके उद्गम हैं किंतु उनका उद्गम कोई नहीं। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर जिसका कोई उद्गम नहीं, आदिर जो सबके उद्गम है गोविंद। सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण है। अगर कोई पूछे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तू। अब काहे को बनाई वो तो आप सब जानते ही हो, लेकिन किसने बनाई, तो सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण। ये इस श्लोक में आज सब्जेक्ट मैटर था, मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक और श्लोक बीच में से है जो भगवान को, भगवान सर्वस्व हैं और किस तरह से